दोस्तों आप सुन रहे हैं लोक कथाएं ईशान सक्सेना के साथ। आज की लोक कथा दानवों का प्रतिशोध। ये सिक्किम की एक लोक कथा है। ऐसी धारणा है कि लेप्चा जाति के पूर्वजों ने अपने 7 बच्चों को जन्म होते ही जंगल में फेंक दिया था और यही बच्चे बड़े होकर शक्तिशाली 7 राक्षस बन गए। उनमें जो सबसे बड़ा लासो मंगो पानू था वो राक्षसों का राजा बना। राजा बनने के बाद लासो मंगो पानू ने लेप्चा जातियों से बदला लेने की सोची, क्योंकि बचपन में ही बच्चों को जंगल में फेंककर अपनी क्रूरता का परिचय देने वाली लेप्चा जाति प्रति इनमें भारी आक्रोश भरा हुआ था। राक्षस लेप्चा जाति की युद्ध के लिए ललकारा, ए पापियों, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारी बर्बादी के पश्चात मैं इस डेनजोंग में राज करूंगा। अगर हिम्मत है तो आओ मेरा सामना करो। जब लेपचाओं में उसका मुकाबला करने के लिए आगे कोई नहीं आया तो लासो मंगो पानू ने गुस्से से कहा, आयरो, क्यों पीछे खड़े हो? कि ऐसे वचनों से लेपचा लोगों ने सोचा कि अब मुकाबला करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। उन्हें तो उसकी ललकार का सामना करना था, वरना उनकी जाति पर कायर होने का कलंक लग जाता। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र लिए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। राक्षसों और लेप्चा जाति के मध्य बहुत दिनों तक युद्ध खिंचता चला था। लेप्चा लोग बड़ी बहादुरी से युद्ध लड़ रहे थे। दोनों ओर से भारी संख्या में नरसंहार हो रहा था। लेप्चा जाति जिस फुर्ती से तीर भाले का इस्तेमाल कर रहे थे उससे लासो मंगो पानू की सेना बड़ी संख्या में हताहत हो रही थी। इससे लासो का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसका गुस्सा इतना बढ़ा कि उसने कहा कि लेप्चा लोगों की इतनी हिम्मत के वो मेरा मुकाबला करें? अपनी राक्षसी शक्ति का प्रयोग कर युद्ध भूमि में कई भ्रम पैदा कर। वहीं लेप्चा जन चूहों की सेना के संग युद्ध करते, वहीं दूसरे क्षण उनके प्रतिरोधी बैल में बदल जाते। लेप्चा जन ने देखा कि तामसिंग थिंग और लासो मूंग बीच में भयंकर मुकाबला और अंत में तामसिंग थिंग ने दैत्य राजा लासो को परास्त कर दिया। माशबीन लोगों ने देखा कि तामसिंग थिंग ने दैत्य राजा को जमीन पर पटक दिया, लेकिन उस दैत्य का लेप्चा जन के मध्य इतना भय समाया था कि वो उसके पास जाने की हिम्मत ना कर सके। उसकी इतनी हिम्मत ना हुई कि वो जाकर देख सके कि ये जिंदा है या मर गया। हालांकि उन्हें अभी भी उसकी मौत पर संदेह हो रहा था। वो सोच रहे थे कि शायद लासो मूंग मूर्छित हुआ है, भी वो उसके पास ना जाएंगे, क्या पता कि उसके पास पहुंचे और उसको होश आ जाए। उसका निर्जीव शरीर लकड़ी के कुंदे की तरह सुन्न जमीन पर पड़ा था, जो ना हिल रहा था और ना जिसमें जीवन का कोई संकेत मिला। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे आखिरकार होगा तो होगा क्या। लासो मूंग अपनी दानवीय शक्ति का इस्तेमाल कर कभी भी उठकर बैठ सकता है, लेकिन समय इसका खात्मा करना जरूरी था। ये सोचकर एक लेप्चा व्यक्ति ने मयान से तलवार निकाली और उसके शरीर को धर से अलग कर दिया। दृश्य की भयानकता को देखकर वो व्यक्ति खुद भी घबरा गया। एक दूसरे बहादुर व्यक्ति ने आगे बढ़कर दानव को देखा से इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि शरीर के टुकड़े होने के बावजूद दानव का शरीर गर्म था और उसके हृदय की गति अभी भी चल रही। वहीं शरीर के कटे हुए हिस्से से भी लगातार खून बह रहा था। हृदय की धड़कन को देखकर उसे ये यकीन हो गया कि इसकी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि वो तो अमर है। आपके शरीर के कटे हिस्से जुड़ जाएंगे और वो जीवित हो उठेंगे। सबने ये सोचना शुरू किया तो दानव के इस शरीर को रखने में तो बहुत खतरा है कि अगर ये दानव जब जीवित होगा तो ये किसी को नहीं छोड़ेगा। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो दानव के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दें। ये शरीर के टुकड़े किए गए और हड्डियों को भी तोड़ा गया के बाद उसके टुकड़ों को हवा में यहां वहां फेंक दिया। वो निश्चिंत हुए और सबने चैन की सांस ली। अंत में सबको ये यकीन हो गया कि दानव की मौत हो चुकी। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना था कि उसकी आत्मा यहां वहां भटक रही है और वो अपनी मौत का बदला जरूर लेंगे। तासुमुंग का मांस मच्छर में परिवर्तित हुआ। इसमें लेपचा लोगों के जीवन में कई मुश्किलें खड़ी कर। दानव के शरीर से मच्छर, मक्खी, जी और कीड़े मकोड़े बने, जो आज भी मनुष्य के लिए तकलीफ का कारण हो। इसी प्रकार से कीड़े मकोड़ों की उत्पत्ति हुई और दानवों के राजा ने मानव समाज से अपना प्रतिशोध लिया। ये भी मानना था लोगों का कि शायद अगर ये चीज नहीं करी जाती तो इस तरह के भयंकर जीव जंतु पैदा नहीं होते। ये कहने को बड़े छोटे कीड़े मकोड़े थे, लेकिन इनका जहर और इनकी परेशानियां बहुत। जब दानव से पूरी तरह से लेपचा समाज को मुक्ति मिली तब तक वो लोग काफी अलग थलग हो चुके। और एक दिन ऐसा भी आया जब उन लोगों ने एक स्थान पर एकत्र होकर जश्न मनाया और इस जश्न में तामसिन थिंग स्वयं नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया जो निरंतर 7 दिनों तक चलता रहा। अंतिम दिनों में तामसिन थिंग ने इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित किया कि लेपचा और दानवों के संघर्ष में जिन लोगों की भूमिका रही है उन्हें सम्मानित किया जाए। इस व्यक्ति ने निडर होकर मृतक दानव को देखने की हिम्मत जुटाई है से लूट सांग मून की उपाधि दी गई। यहां केवल वीर योद्धाओं का ही सम्मान नहीं हुआ बल्कि उनका भी सम्मान हुआ जिन्होंने तीर, तलवार और भालों का निर्माण किया। इसका इस्तेमाल युद्ध में किया गया ने कर वो मून से सम्मानित किया। जिन लोगों ने युद्ध की स्थिति में योद्धाओं के लिए खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करी उन्हें भी अलग अलग उपाधि दी गई। युद्ध के साथ जुड़े सभी वीरों का सम्मान। समाज के हर तबके को अपनी भूमिका के अनुसार सम्मान मिला और लेपचा समाज सभी वर्गों में अपना अपमान। वहां जो जातिगत आधार पर भेद देखने को मिलता है वो उनके प्रदर्शित वीरता और सहायता पर केंद्रित कि दानवों का प्रतिशोध लेने के बावजूद भी वो सब एक। तो आप सुन रहे थे मेरे साथ सिक्किम की लोक कथा दानवों का प्रतिशोध। आशा करता हूं कि आपको ये लोक कथा बहुत पसंद आई। इसी और भी लोक कथाएं सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को फॉलो करिए।